भजन संहिता 118। भजन 118 हलल का अंतिम भजन है। भजन 118 पद 1। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। इस पद में धन्यवाद और प्रशंसा करने का प्रोत्साहन है। यहोवा का धन्यवाद करो। भजन 118 पद 1 में आगे लिखा है, और उसकी करुणा सदा की है। उसका धन्यवाद करने का कारण उसकी भलाई और दया है। भजनों में हमें परमेश्वर की भलाई और दया के लिए धन्यवाद करने को सदैव कहा गया है। भजन 118 पद 2 से लेकर 6 तक। इसराइल कहे, उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवे कहे, उसकी करुणा सदा की है। मैंने साकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री अध्याय 8 में भी इसी बात कहता है। रोमियो 8 अध्याय 33 और 34 पद। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर की दैनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। पौलुस कहता है रोमियो 8 अध्याय 31 पद, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कलीसिया के वातावरण में रहते हुए बचपन गुजर जाने पर भी मैं कभी भी ये न समझ पाया कि परमेश्वर मेरा पक्ष लेता है। मैंने बहुत बार सोचा था कि परमेश्वर मेरे विरोध में है। वो प्रतीक्षा करता है कि मुझसे भूल हो और वो मुझे सजा दे और मुझे अपने राज्य से निकाल दे। वास्तव में मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसके राज्य से निकाल दिया गया हूं। मुझसे रविवार रात्रि की प्रतीक्षा कठिन होती थी, अतः मैं आगे जाकर उद्धार प्राप्त करूं और स्वर्ग का राज्य प्राप्त करूं, क्योंकि मैं वास्तव में मसीही जीवन व्यतीत करना चाहता था। मैं वास्तव में नरक में जाना नहीं चाहता था। मैं हृदय से परमेश्वर से प्रेम करता था और मेरी आत्मा उसकी सेवा करना चाहती थी, परंतु मेरा शरीर कमजोर था। इस तरह ये विचार मेरे मन में घर कर गया कि परमेश्वर मेरे विरुद्ध है। रोमियों की पत्री के अध्याय 8 ने मेरे मसीही अनुभव को बदलने में जो कार्य किया उसको बताना कठिन है। इसके द्वारा मैंने जाना कि परमेश्वर मेरे विरोध में नहीं, परंतु मेरे लिए ही है। वो मेरे विरोध कोई दोषारोपण अभियोग इकट्ठे नहीं कर रहा था, और ना ही वो मेरी असफलताओं और कमजोरियों के अनुसार मेरे साथ व्यवहार करता है। परमेश्वर ने मेरे खाते में पाप मुक्त की अटल मोहर लगा दी है। वो गलतियां नहीं ढूंढ रहा है, और ना ही यीशु मसीह मुझे दोषी ठहराता है। वो मुझे दोषी न ठहराते हुए मेरी मध्यस्थता कर रहा था। यदि मैं भला और सिद्ध होता तो यीशु मसीह को मेरे लिए मध्यस्थता करने की आवश्यकता न होती, और मैं अपनी स्वयं की सिद्धता में परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाता। अब मैं कह सकता हूं, मैं सिद्ध यहां हूं, क्योंकि यीशु मध्यस्थता करता है। वो मेरी कमजोरियां और असफलताओं को अपने ऊपर ले लेता है। उस पर कौन दोष लगाएगा? मसीह मरा और जी भी उठा, और पिता की दैनी ओर बैठा मध्यस्थता करता है। इन सब बातों के बारे में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यहां भजनकार कहता है, परमेश्वर मेरी ओर है। कैसी संतावना की बात है, कितने सुकून की बात है। परमेश्वर मेरे लिए है, परमेश्वर मेरी ओर है, इसलिए मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या करेगा? मनुष्य मेरी निंदा करता है, मुझमें दोष ढूंढता है। मैं स्वयं भी अपने में गलतियां पाता हूं और दोषी ठहराता हूं, परंतु मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है। भजन 118:7। यहोवा मेरी ओर, मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट हूंगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर मेरे लिए है, वो मेरी ओर मेरा सहायक है। जो लोग मेरी सहायता करते हैं वो उनका सहायक है, इसलिए हम निश्चय ही अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे। भजन 118:8। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। जब मैं ये पढ़ता हूं, मेरे हृदय में इसकी प्रतिक्रियाएं उभरती है और मैं कहता हूं, ये बिल्कुल ठीक है। मनुष्य ने मुझे बहुत बार नीचा दिखाया है, परंतु परमेश्वर ने मुझे कभी नीचा नहीं दिखाया। हां, ये बिल्कुल सच है। प्रभु की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। तो भी जब मैं कठिनाई में होता हूं, मैं सहायता के लिए मनुष्य की ओर देखता हूं, ये जानते हुए भी कि परमेश्वर की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। कितनी बार मैं निराशा और पराजित हुआ हूं, जबकि मेरे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जब कोई मनुष्य आकर कहता है, मैं इस कार्य को करने में तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं कहता हूं, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की महिमा हो, वो सब ठीक करेगा। इस तरह मैंने अपना विश्वास एक मनुष्य की बातों पर डाला कि वो हमारी सहायता करेगा। बहुत से लोगों में बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करने की आदत होती है, परंतु उनको पूरा करने की सामर्थ नहीं रखते। कुछ लोग तरोड़ मरोड़ कर झूठ बोलने वाले होते हैं, वे वायदे करते और भूल जाते हैं। मेरा मतलब, वे अपनी आदत से मजबूर होते हैं। कुछ लोग वास्तव में मजबूर होते हैं। हम में से कई लोग ऐसे लोगों से मिल चुके हैं जो वायदा तो करते हैं और उसे पूरा करने की इच्छा भी रखते हैं, परंतु उसे पूरा करने की योग्यता उनमें नहीं होती। ये आश्चर्यजनक बात है कि बहुत लोगों ने बहुत बार मनुष्य पर भरोसा करके ठोकर खाई है। भजन 118:9-10। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। अगले पदों में भी वो इसी विचार को आगे बढ़ाता है। भजन 118:11-12। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निस्संदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की नाई घेर लिया है, वे मधुमक्खियों के झुंड के समान हैं। भजन 118:12-14। परंतु कांटों की आग की नाई वे बुज गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार ठहरा है। मुझे ये पद बहुत पसंद है, परमेश्वर मेरा बल है, मैंने उसके बल पर भरोसा करना सीख लिया है। वो मेरा गीत है, बहुत बार मैं सीटी बजाता या गुनगुनाता हूं या परमेश्वर की आराधना या प्रशंसा का गीत गाता हूं। ये जानना कितना रोमांचकारी होता है कि हमारे जीवन में प्रभु अर्ध चेतना का ताना बाना बुना हुआ है। परमेश्वर मेरा गीत है, उसके लिए मेरी प्रशंसा सदा होती रहेगी, उसके अतिरिक्त कोई और नहीं। मुझे दूसरे गीतों में कोई आनंद नहीं मिलता, मेरे प्यार की आग उसके लिए है। कितना महिमामय है जब हम उसकी स्तुति गाते हैं, वह हमारा उद्धार बन जाता है। भजन 118 पद 15। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है, यहोवा के दैने हाथ से पराक्रम का काम होता है। या धर्मियों के तंबुओं में, आधुनिक युग में हम लोग तंबुओं में नहीं रहते, इसलिए ये कहना उचित होगा कि धर्मियों के घरों में, आपके घर में जय जयकार की ध्वनि होनी चाहिए। मैं समझता हूं संगीत का हमारे जीवनों में बहुत अधिक प्रभाव है, और मैं समझता हूं हमें अपने आप को आत्मिक वातावरण में रखना आवश्यक है। गलातियों 6:7-8 पद। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मैं सोचता हूं घर में अच्छे संगीत का होना मूल्यवान है। यदि आपके पास रिकॉर्ड बजाने का साधन है तो मैं सोचता हूं कि आपके पास प्रशंसा के गीतों के रिकॉर्ड का अच्छा संग्रह होना चाहिए, जो मसीह पर आधारित संगीत हो। अपने घर के वातावरण में इसे अवश्य रखें, क्योंकि इससे आपकी आत्मा निरंतर बढ़ेगी और आप जो बोओगे वही काटोगे। आप बार बार सुनते होंगे, मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। ये संसारिक बात है, परंतु आपने जो बोया है वही काट रहे हैं। यदि आप आत्मा के लिए बोओगे तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटोगे, इसलिए हमें ऐसा ही करना चाहिए। भजन संहिता 118 पद 16। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। परमेश्वर का दाहिना हाथ, भजन 118 पद 17-18 तक। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। हमें धर्मशास्त्र में बताया गया है, नीति वचन 3:11-12 पद, जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। सुधार और दंड में बहुत फर्क है। परमेश्वर ने दुष्टों के लिए दंड, परंतु अपनी संतान के लिए सुधार रखा है। सुधार का कार्य ताड़ना से होता है। भजन संहिता 119:71 पद, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हम भजन 119 में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने मुझे सुधारा, भला ही हुआ। ये संकेत है कि मैं उसका बालक हूं। ये चिन्ह है कि उसे मेरी चिंता है। उसका डांटना दंड नहीं है, ये तो मुझे सुधारने का काम है। भजन 118 पद 19-21 तक। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके याह का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। भजन की भविष्यवाणी का ये भाग पद 19 से आरंभ होता है। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके याह का धन्यवाद करूंगा। धर्मशास्त्र में और भी भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु के पूर्वी दरवाजे से प्रवेश करने के संबंध में है। जब यीशु ने अपनी विजय यात्रा का प्रवेश यरूशलेम में किया था, तब वो पूर्वी दरवाजे से आया था, क्योंकि वो जैतून पहाड़ से जाने वाले रास्ते से होकर आया और मंदिर में गया, और जो दरवाजा जैतून पहाड़ से मंदिर की ओर खुलता है वो पूर्वी दरवाजा है जो सीधा मंदिर में जाता है। बेशक यीशु इसी दरवाजे से अंदर गया था जब उसने विजय प्रवेश किया। एहेस्केल की पुस्तक के 43 अध्याय में उसने कहा, मैं आत्मा के द्वारा पूर्वी दरवाजे पर ले जाया गया जो बंद था, कोई मनुष्य उसमें से आता जाता नहीं था, क्योंकि प्रभु इसमें से होकर आया गया, इसलिए वो बंद है और खोला ना जाएगा, और वो अपने लोगों के साथ इस द्वार के वरामदे पर भोजन करेगा। इसलिए इस दरवाजे का संदर्भ यहां दिया गया है। हो सकता है उसकी विजय प्रवेश के संदर्भ में हो जो उसने मंदिर में पूर्वी दरवाजे से किया। दरवाजा खोलने के संबंध में एक और भजन 24 है कि महिमा का राजा वहां से प्रवेश करे। भजन संहिता 24 का 8। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। दरवाजा खोलने का भजन 24 जो भविष्यवाणी का भजन है। दरवाजों अपने सर ऊंचा करो, सदा के दरवाजों ऊंचे उठो, महिमा का राजा प्रवेश करेगा। महिमा का राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, जो युद्ध में पराक्रमी है। दरवाजों अपने सर ऊंचा करो, तुम सदा के दरवाजों ऊंचे उठो, महिमा का राजा प्रवेश करेगा। प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वो प्रतापी राजा है। इसलिए प्रभु का दरवाजा जिसमें धर्मी प्रवेश करेंगे निस्संदेह पूर्वी दरवाजे का संदर्भ है। जब यीशु मसीह पराक्रम और महिमा के साथ फिर आएगा और हम उसके साथ होंगे, वचन के अनुसार वो अपने पांव उस दिन जैतून पर्वत पर रखेगा और जैतून पर्वत दो भाग हो जाएगा, और यीशु पूर्वी दरवाजे से पुराने यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश होगा और धर्मी उसमें प्रवेश करेंगे, हम भी। भजन 118 पद 22। राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। ये राजमिस्त्री अर्थात इसराइल के द्वारा यीशु मसीह का इनकार करने की भविष्यवाणी है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया। यीशु मसीह परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार इसराइल देश में मसीहा होकर आया और उन्होंने उसका इनकार किया, परंतु वही कोने का सिरा हुआ और वही कोने का पत्थर हो गया, वही मुख्य कोने का पत्थर जिस पर कलीसिया बनी है। मत्ती 16 का 18। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। ये वचन नए नियम में है। यीशु ने इसका संदर्भ उसी दिन दिया था जब हाकिमों ने उसका इनकार किया था। मत्ती अध्याय 21 में यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया कि एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा, गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने नौकरों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मारा। अंत में उसने निर्णय लिया कि वो अपने इकलौते बेटे को भेजूंगा, वे उसके पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, उसे मार डाले और उसका पैतृक धन ले ले। यीशु ने कहा, जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? फरीसियों ने उत्तर दिया, उन बुरे लोगों को वो बुरी रीति से नाश करेगा। यीशु ने कहा, तुम ठीक कहते हो, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया? उसने कहा, जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। यीशु ने इस भजन का संदर्भ अपने लिए दिया था कि यहूदी हाकिम उसका इनकार करेंगे और परमेश्वर का राज्य उनसे ले लिया जाएगा। वो इनको नाश करेगा और उन्हें अलग करेगा। वो ऐसे मनुष्यों को जो फल लाए, अर्थात कलीसिया को जो वास्तव में अन्य जातियों से निकलकर आई, अपनी दाख की बारी दे देगा, इस उद्देश्य से कि वो उसके लिए फल लाए। इसी बात का संदर्भ पत्रस प्रेरितों के काम अध्याय 4 में तब देता है जब उसे महायाजकों के सामने बुलाया गया था, क्योंकि उसने लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया था और पूछा, तुमने ये काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है? पत्रस ने कहा, यीशु नासरी के नाम से ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। बाद में पत्रस अपनी पहली पत्री अध्याय 2 में उसी पत्थर को, जिसे राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, अंतिम संदर्भ देता है। सुलेमान के द्वारा मंदिर बनाने के समय की एक रोचक कहानी है। ऐसा बताया जाता है कि सुलेमान के मंदिर में लगने वाले हर एक पत्थर मंदिर से दूर निकाला, काटा और तराशा जाता था, परंतु हर पत्थर ठीक ठीक माप का होता था और निशान लगाकर भेजा जाता था कि वो दीवार में कहाँ लगेगा। पत्थर निकालने की जगह यरूशलेम के उत्तर पश्चिम की ओर आज के हेरोदेस दरवाजे के निकट थी। आज आप उन स्थानों पर जा सकते हैं जहां से सुलेमान के मंदिर के लिए विशाल पत्थर निकाले गए थे, जहां अब अरब का बस स्टेशन है। आप उस स्थान को देख सकते हैं जहां पत्थर तराशे जाते थे। कहानी के अनुसार एक पत्थर मंदिर में भेजा गया जिस पर निशान नहीं लगा था, और राजमिस्त्रियों को पता नहीं था कि वो कहां लगेगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि पत्थर गलती से भेज दिया गया है। मंदिर बिना किसी औजार और आवाज के बनकर तैयार हुआ था, और हर एक पत्थर मंदिर से दूर तरश कर लाया गया था और बिना किसी मशीन की सहायता से काट कर भी अपने स्थान पर ठीक बैठता था। अब ये पत्थर कहाँ लगना है किसी के भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो दीवार में ठीक नहीं बैठता था। उन्होंने उस पत्थर को मंदिर की दीवार की थोड़ी दूरी पर फेंक दिया, एक ओर डाल दिया, और कुछ वर्षों के बाद जब मंदिर पूरा होने को आया, उन्होंने पत्थर भेजने वाले स्थान पर संदेश भेजा, हम मंदिर के समर्पण को तैयार है, मुख्य कोने का पत्थर कहाँ है? उन्होंने उत्तर भेजा, हमने वो बहुत समय पहले भेज दिया, तुमने उसे कहाँ लगाया? इस तरह दोनों ओर से संदेशों का आदान प्रदान होता रहा। अंत में किसी को याद आया कि कभी एक पत्थर आया था जो किसी स्थान में नहीं लग रहा था, अतः उसे निकम्मा जानकर फेंक दिया गया था। जब उसकी खोज करवाई गई तब उसे झाड़ियों में पाया गया, उसके ऊपर मिट्टी और झाड़ियां उग गई थी, वही मुख्य कोने का पत्थर था। ये कहानी सुलेमान के मंदिर के भवन के बारे में कही जाती है। ये वास्तव में सच है या नहीं, ये सिद्ध करने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, परंतु कुछ भी हो, यहां एक भविष्यवाणी है और हो सकती है कि उस समय ये प्रासंगिक भी न रही हो, परंतु ये मसीह यीशु से संबंधित अवश्य है। भजन 118 पद 23। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यीशु का ये कथन फरीसियों के लिए है। आगे का पद विजय प्रवेश के दिन के लिए लिखा गया है। भजन 118 पद 24। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। और जैसे जैसे वो यरूशलेम की ओर बढ़ता है, प्रेरितों की भीड़ आनंद करके प्रभु की स्तुति करने लगती है और कहती है हुसैना, अथवा भजन 118 पद 25 और 26। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। ये पूरा भाग यरूशलेम में यीशु के विजय प्रवेश के संबंध में है। जैसे कोने का पत्थर तुच्छ जाना गया था, वो वैसे ही यरूशलेम में यहूदियों के द्वारा तुच्छ जाना गया। विधिवत मसीहा का आना और विधिवत उसका इनकार किया जाना भजन 118 की भविष्यवाणी के अनुसार है। भजन 118 पद 27। यहोवा ईश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सिंगों से रस्सियों से बांधो। और यीशु जो हमारे लिए मसीहा बनकर आया, हमारे लिए बलिदान दिया। भजन 118 पद 28 और 29। हे यहोवा तू ईश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। ये परंपरागत भजन है जो फसा के पर्व पर गाया जाता था, और खुशी की बात यह है कि इसे यीशु ने भी अपने प्रेरितों के साथ गाया था। कुछ दिन पहले वे ऊंची आवाज में गा रहे थे, धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आता है। कुछ दिन पहले राजमिस्त्रियों ने पत्थर को तुच्छ जाना, इसलिए उस रात को उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले वे गा रहे थे, यज्ञ पशु को वेदी के सिंगों से रस्सियों से बांधो।